Recording in progress.
الحمد لله وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ مومنون کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے, اور اس میں ہم نے کل کی کلاس میں اس لطیف بات کو پڑھ کے مکمل کیا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب قدر کی 27th شب کو ہونے کی کیا وجہ بیان فرمائی. ٹھیک ہے کہ بڑوں کا ایک حلقہ تھا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں کون سی شب قدر ہے, تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا, تو سب نے اللہ عالم کہہ کر کے ایکسکیوز کر لیا. اور حضرت نے عباس رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ بیان کری کہ اللہ تعالیٰ نے 7 کا جو عدد ہے وہ بہت سارے مقامات پر استعمال فرمایا ہے, تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ شب قدر 27th شب ہوگی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے نا اپنے تخلیق کے اندر یقیناً یعنی ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر جو یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت رکھتا ہے, کوئی نہ کوئی مقصد رکھتا ہے. جیسے کہ ایک مقولہ بھی ہے عربی زبان کے اندر کہ فعل الحکیمی لا یخلو عن الحکمہ, کہ حکیم کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کام ہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی جو ہے وہ عدد بنائے ہیں, رائٹ, کچھ چیزوں کے جو ہے وہ پیٹرنز بنائے ہیں, باقاعدہ جیومیٹریکل پیٹرنز ہیں. اگر آپ یعنی اگر آپ ایون جو ہے وہ اسپیس میں جا کر کے دیکھیں, کاسموس میں جا کر کے دیکھیں, تو اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی فورسز رکھی ہیں کہ جو فورسز ایک دوسرے کو بیلنس کرتی ہیں, اس کی وجہ سے جو ہے وہ آربٹس کے اندر پلانٹس گھوم رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک خاص پیٹرنز ہیں کہ جن کے اندر پلانٹس جو ہیں وہ سٹارز کے گرد چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں, اور وہی والا پیٹرن اسی طرح کے آربٹس جو ہیں وہ سب سے ٹائنیسٹ آف کریشن, یعنی آپ ایٹم کو جب الیکٹران مائکروسکوپ سے جا کر کے دیکھتے ہیں, یعنی کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ عام مائکروسکوپ سے بھی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, اپنی آنکھ سے دیکھنا تو دور کی بات, اتنی چھوٹی چیز میں جب جا کر کے آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک نیوکلیس نظر آتا ہے, اور اس نیوکلیس کے گرد جو ہے وہ الیکٹرانز باقاعدہ اسی طرح کے آربٹس کے اندر روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کے آربٹ کے اندر پلانٹس سن کے گرد روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹرنز رکھے. پھر آپ جو ہے وہ مزید مائکروسکوپ کے ذریعے سے جب فار ایگزامپل جو سنو فلیکس ہوتے ہیں, جو برف باری ہوتی ہے, تو برف باری کے جو فلیکس ہوتے ہیں وہ انتہائی یعنی نرم ملائم ہوتے ہیں. جنہوں نے برف باری کو کبھی دیکھا ہے اور اس کے اندر یعنی کبھی وقت گزرا ہے ان کا, تو وہ جانتے ہیں کہ کیسے وہ ان کو فلیکس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, برف کے ان فلیکس کو جب آپ مائکروسکوپ کے اندر رکھتے ہیں تو اس کے اندر باقاعدہ ہر ایک کے اندر ایک پیٹرن ہوتا ہے, فکس پیٹرن. اس کے اوپر باقاعدہ کمپیوٹر سائنس کے اندر جو ہے وہ ایک کمپیوٹر پروگرام بنایا گیا فریکٹلز کے نام سے, رائٹ, جو لوگ کمپیوٹر سے واقف ہیں پروگرامنگ سے تو وہ جانتے ہیں فریکٹل پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. تو وہ پیٹرنز جو ہے وہ سنو فلیکس کے اندر, یعنی اتنی چھوٹی سی چیز کے اندر بھی اللہ نے پیٹرن رکھا, اور اتنی عظیم الشان بڑی مخلوق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے پیٹرنز رکھے. तो हर चीज, और इसी तरह जिस तरह पैटर्न्स हैं उसी तरह से अदद भी हैं, तादाद भी हैं। कल साजिद से किसी नौ मुसलमान ने सवाल पूछा कि जो उनको उनके शौहर ने बताया कि भाई नमाज के बाद ना हम तस्बीह करते हैं, तो 33 मरतबा, 33 टाइम्स जो है वो सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, 33 टाइम्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, और 34 टाइम्स या कुछ हदीसों के मुताबिक 33 टाइम्स डिफरेंट तस्बीह आते हैं। ये तस्बीह फातमी अलग है और अली रज़ान को अलग तस्बीह बताई, तो 33 33 33, राइट। तो अब उनका सवाल ये था कि ये 33 कहाँ से आया, तो उनको दो जवाब दिए। एक जवाब तो ये था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, राइट, आप ससरम ने फरमाया कि 33 टाइम्स करना है, तो ये वहां से आया, ठीक है। अब इसके अंदर हिकमत क्या है कि वाई 33, वाई नॉट 32, वाई नॉट 25, वाई नॉट सम अदर नंबर्स, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की इसमें यकीनन कोई हिकमत है कि 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह पढ़ने से कुछ ऐसा अमल होता है, कुछ ऐसी तब्दीली आती है अल्लाह के निजाम के अंदर कि जिसकी वजह से मोमिन को जो है वो एक खास किस्म का सवाब, एक खास किस्म का फायदा हासिल होता है। कुछ अनवारात और तजल्लियात हो सकता है जो कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ने से ट्रिगर होती हो, ट्रिगर होती हो, राइट। अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हुआ है कि 33 करेंगे तो फिर ऐसा होगा, 33 से कम करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। मिसाल के तौर पर इसी को एक और मिसाल से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि जब आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर्स जो है ना वो एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। अब वो कहते हैं जी ये वाली जो एंटीबायोटिक है ना, जिसके जिसका जो डोजेज है यानी इसकी पोटेंसी जो है वो 500 mg है, इस वाली एंटीबायोटिक को आप दिन में एक मर्तबा खाएं और 5 दिन तक लगातार खाएं, तब आपके अंदर जो है वो कुछ इस किस्म का इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होगा कि जिसकी वजह से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, राइट। तो अब ये एक एक मिकदार हो गई ना और एक तादाद हो गई ना, इस तादाद से एक एक प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो इसी जिस तरह डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी छोटी छोटी चीजें बनाई हुई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने एक 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 गोली बना ली, उसके अंदर एक 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 पैटर्न सेट कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो भी पैटर्न सेट किया, जो भी तादाद सेट करी है, तो उसके अंदर यकीनन हिकमतें हैं, लेकिन हमें हर चीज समझ में नहीं आती क्योंकि हमारी अकल महदूद है, हमारा इल्म महदूद है, और हमारा महदूद इल्म जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई नॉलेज और एक्सपोजर के जरिए से वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता भी रहता है। तो ऐसा भी मुमकिन है कि कोई चीज हमें आज समझ में नहीं आ रही लेकिन कल समझ में आ जाए, जैसे कि सूरह मोमिनून के इन आयात के अंदर जो इंसान की तख्लीक के जो मराहिल अल्लाह ताला ने बयान किए हैं, आज से 100 साल पहले जो ईमान वाले थे वो इन आयात को पढ़ते थे और ऑन बेस्ड ऑन फेस वैल्यूज के ऊपर ईमान ले आते थे, हाँ भाई अल्लाह ने कहा है ऐसा ही होता होगा, राइट। उनको नहीं पता कि असल में क्या हो रहा है अंदर, कैसे कैसे स्टेजेस, कितना कितना वक्त उसके अंदर लग रहा है। जब माइक्रोस्कोप और ये इमेजिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हो गई तो अब ये तफसीलात जो है वो इंसानों को समझ में आ गई कि हाँ ये ऐसे होता है, ठीक है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इसके अंदर वक्त के साथ इंसान को जो है वो तफसीलात खुली, उसी तरीके से 33 मरतबा सुबहान अल्लाह ये भी आज नहीं पता, क्या पता कल पता चल जाए कि 33 मरतबा से ये होता है, ठीक है। तो 7 7 7 के जो अदद अल्लाह ताला ने रखे हैं ना, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला की हिकमतें ही हैं और कुछ ना कुछ तो होता होगा, ठीक है ना। अब हमें पता है नहीं पता, किसी को हो सकता है आप में से पता हो, किसी की कोई ऐसी नॉलेज हो, ऐसा एक्सपोजर मिला हो कि आपने पढ़ा हुआ हो ऐसी चीज को या देखा हुआ ऐसी चीज को, हमारे जहन में तो इस वक्त नहीं आ रहा। तो हम आगे चलते हैं कि फरमाते हैं कि फिर तख्लीक इंसानी पर जो 7 दौर गुजरते हैं, 7 स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट या बेबी डेवलपमेंट कह लें, कुरान करीम की बलागत देखिए, फसाहत और बलागत, ठीक है ना, यानी कैसे क्या जबरदस्त अंदाज में अल्लाह ताला ने अपनी अपनी इस जुबान को, अरबी जुबान को इस्तेमाल किया है इसको समझाने में कि अरबी के अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए। देखें कि इन सब को एक ही अंदाज से बयान नहीं फरमाया, बल्कि कहीं एक दौर से दूसरे दौर तक इनकलाब को लफ्ज़ सुम्मा से ताबीर किया है, जो तराखी यानी कुछ देर से होने पर दलालत करता है, विद ए सर्टन अमाउंट ऑफ डीले, ठीक है, सुम्मा का जो लफ्ज है वो डिलेड चेंज को रिप्रेजेंट करता है। कहीं इस इनकलाब का जिक्र हर्फ फा से किया है, फा, ठीक है, जो जो बिना ताखीर होने पर दलालत करता है, यानी अरबी जुबान में फा क्विक चेंज के लिए इस्तेमाल होता है, क्विकर, और सुम्मा जो है वो डिले चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें इशारा इस तरतीब की तरफ है जो एक इनकलाब से दूसरे इनकलाब के दरमियान फितरतन होती है, ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने फितरत यानी बना दिया इस तरीके से कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, कि बाज इनकलाबात इंसानी अकल के लिहाज से बहुत मुश्किल और बहुत देर तलब होते हैं और बाज इतने देर तलब नहीं होते हैं। चुनांचे कुरान करीम ने इब्तदाई तीन दौर को लफ्ज़े सुम्मा के साथ बयान किया है, अव्वल सुलाला तीन, ठीक है ना, सुलाला तुम मिन तीन, ये वो यानी चिकनी मिट्टी गीली मिट्टी का खुलासा, ठीक है, फिर उसको नुतफे की सूरत में तब्दील करना, उसको लफ्ज सुम्मा से फरमाया, सुम्मा जालनाहु नुतफा, ठीक है, कि हमने इसको जो जो सुलाला तीन जो थी ना उसको जो है वो नुतफा बना दिया, क्योंकि मिट्टी से गिजा का पैदा होना, फिर गिजा का जुज्वे बदन बनना, फिर उसमें से जुज्वे खास का नुतफे की सूरत में तब्दील होना, जिसको कि जायगोट बनना कहते हैं, और उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स का जो है वो बन जाना, ये सारा प्रोसेस जो है ये इंसानी कयास की रूह से बड़ा वक्त चाहता है, ठीक है ना। अब ये बड़ा वक्त से मुराद 1000 साल नहीं, 1000 साल भी बड़ा वक्त होता है, 100 साल भी बड़ा वक्त होता है, यहां पर बड़े वक्त से मुराद कंपेयर टू द अदर चेंजेस ये बड़ा वक्त है, ठीक है। अच्छा, इंसानी कयास क्या चीज होती है भाई? कयास आराइया, आराइयों का लफ्ज हम उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिसको के अटकल पिच्चू भी कहा जा सकता है, अटकलें लगाना और अजम्पशंस करना, ठीक है, लेकिन यहां पर कयास का जो लफ्ज है ना ये बड़ा संजीदा पस मंजर में इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यहां पर कयास से मतलब ये है कि इंसान जब बाकायदा शऊर के साथ किसी चीज को देखता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर से ना कुछ बुनियादी बातें अखज करता है, कुछ इल्लतें अखज करता है, कुछ वजूहात अखज करता है, कुछ जो है वो उसूल अखज कर लेता है, उसूल, ये सारी चीजें जो है ना उसूल डिराइव कर लेना किसी प्रोसेस के अंदर से, यानी एक जो है वो आप प्रिंसिपल्स ड्राइव कर लें, राइट, या कोई जो है वो आप इल्लत ड्राइव कर लें, वजह होना, भाई इसकी वजह ये बनी, यानी शराब जो है वो हराम क्यों है, उसकी इल्लत, उसकी वजह ये है कि शराब के अंदर जो है ना वो खमर होती है, और खमर से जो है वो इंसान की अकल जो है वो मांद पड़ जाती है, ठीक है, तो ये शराब के हराम होने की इल्लत बन गई, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं ना कॉन्शियसली, साइंटिफिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आप यानी प्योर फोकस के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर से, इंसान को अल्लाह ताला ने अकल अता फरमाई है कि वो उसके अंदर से फिर कुछ चीजें डिराइव कर लेता है, ठीक है ना। अब उस डेरिवेशन डेरिवेशन की बुनियाद पर वो किसी और चीज को जो है वो समझता है जिसको उसने इतना ज्यादा क्लोजली यानी स्टडी नहीं किया होता, ठीक है, यानी इसको जो है ना आप अंग्रेजी में जैसे एनालॉजी भी कह सकते हैं, एनालॉजी या एस्टिमेशन, इधर से आपने कोई चीज अखस करी और उसकी बुनियाद पर आपने एस्टिमेट कर लिया किसी और चीज को, ठीक है। तो ये जो इंसानी कयास होता है ना, तो इससे फिर इंसान जो है वो कुछ कंक्लूजन्स निकालता है। पहले तो हो गया ना कि जी आपने उसूल निकाल लिए, इल्लत निकाल ली, प्रिंसिपल्स ड्राइव कर लिए, अब इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर आप जो है वो कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव करते हैं, राइट, लॉजिकल कंक्लूजन्स, ठीक है, एनालॉजीज ड्राइव करते हैं। ये कयास का लफ्ज जो है वो शरीयत इस्लामिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, और इसका ताल्लुक जो है वो अकल के इस्तेमाल के साथ ही है, बट बेस्ड ऑन नॉलेज, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस कोई बेवकूफ इंसान बैठा हुआ जो है वो अपने तखयल के अंदर कुछ सोचना शुरू हो गया और उसने कोई कंक्लूजन निकाल लिए, नहीं, अकल का इस्तेमाल इल्म के साथ, ठीक है, ये है सही तरीका कयास करने का। इसी वजह से جو شریعت کے ماخذ ہوتے ہیں, سورسز آف اسلامک جورسپروڈنس, ان میں سے سب سے پہلا قرآن مجید, دوسرا حدیث مبارکہ, تیسرا اجماع امت یعنی علماء کا اجتہاد جس کو کہتے ہیں, اور جو اجتہاد متفقہ ہو جائے, اکثریت علماء کی جس پر متفق ہو جائے اس کو اجتہاد, اس کو اجماع امت کہہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اجماع امت کے بعد ایک چوتھا سورس بھی ہے, چوتھا سورس آف اسلامک جورسپروڈنس, اس کو قیاس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور قیاس کی بڑی سب سے سادہ سی مثال جو ہمارے مشاہد بیان کرتے ہیں کہ جی قرآن مجید میں گائیں کا ذکر ہے, نبی علیہ السلام السلام نے جو ہے وہ گائیں کو حلال قرار دیا, گائیں کاؤ, ٹھیک ہے. اب جو ہے جب مسلمان جو ہے وہ انڈیا یا افریقہ جیسی جگہ پہ پہنچے جہاں پر بفلوز تھیں, بھینسیں, تو اب یہ بھینس حلال ہے کہ نہیں ہے, تو بھینس کو جو ہے وہ گائیں کے اوپر قیاس کر لیا کہ بھائی گائیں کے جو سارا کا سارا سسٹم ہے, جس طرح کا وہ کھانا کھاتی ہے, جس طرح کے اس کے جو ہے وہ کام ہوتے ہیں, جس طرح اس کے اندر سے دودھ نکلتا ہے, جس طرح سے جو ہے وہ اس کے چار پیر ہوتے ہیں, تو بھینس بھی جو ہے نا وہ تقریباً ویسی ہی چیز ہے سوائے اس کے کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے اور اس کے جو ہے وہ سر کے اوپر سینگ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں, باقی ساری چیزیں تو ویسے ہی ہیں جیسے گائیں کی. تو بھینس کو گائیں پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کے گوشت کو بھی حلال قرار دیا اور بھینس کے دودھ کو بھی حلال قرار دیا, رائٹ. تو ایسی بھینس کا دودھ حلال نہیں ہے بھائی, دودھ تو ہر جانور کا ہوتا ہے, ہر میمل کا, لیکن ہر میمل کا دودھ تو حلال نہیں ہوتا نا, ٹھیک ہے. تو یہ قیاس کا جو لفظ ہے پھر شریعت کے پس منظر کے اندر بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اجماع امت پھر سے سمجھا دیں, اجماع کہتے ہیں کنسنسس کو, یعنی متفق ہو جائیں کچھ لوگ کسی بات پر, ٹھیک ہے, اجماع اس کو کہتے ہیں. جب لفظ اجماع شریعت کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد علماء کرام کا کنسنسس, علماء کرام کا متفقہ فیصلہ, ٹھیک ہے. تو علماء کرام کسی چیز پر جب متفقہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ خواب کی بنیاد پر نہیں کرتے کہ جی 10 علماء نے جو ہے وہ خواب دیکھ لیا کہ گائیں وہ بھینس حلال ہونی چاہیے تو اس وجہ سے 10 علماء متفق ہو گئے کہ جی بھینس حلال ہے, نہیں. علماء کرام کا جو کنسنسس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے علمی اجتہاد کی بنیاد پر کہ 10 علماء جو ہیں, مثال کے طور پر مطلب 15 علماء تھے ایک علاقے میں, ان میں سے 10 علماء جو ہے نا انہوں نے جو تحقیق کری اس تحقیق کے نتیجے میں وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ بھینس بھی حلال ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب اس فیصلے کو اجماع علماء امت کہا جائے گا, اجماع امت شارٹ فارم جو ہے اجماع امت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو اب قرآن میں کہیں بھینس کا ذکر نہیں کہ بھینس حلال ہے, حدیث مبارکہ میں کہیں بھینس کا ذکر نہیں کہ بھینس حلال ہے, لیکن حدیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ امت جس بات پر متفق ہو جائے, ٹھیک ہے نا, سبیل المؤمنین, ٹھیک ہے, کہ ایمان والے ان کا جو راستہ ہوگا نا وہ راستہ بھی ہدایت کا راستہ ہے اور اس راستے سے جو انحراف کرے گا وہ عذاب کا شکار ہوگا اللہ تعالیٰ کے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید سے یہ اصول مل گیا کہ اجماع امت جو ہے وہ شریعت کا یعنی شریعت کے اندر باقاعدہ حجت ہے, اٹ ہیز ٹو بی ایکسیپٹڈ اینڈ فالوڈ, اجماع امت. قرآن سے ہمیں صرف یہ ملا ہے, قرآن کے اندر بھینس کا ذکر نہیں ہے, قرآن کے اندر اجماع امت کا ذکر ہے کہ اجماع امت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے اور اس سے انحراف کرنے والا اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا, ٹھیک ہے. اب اس اصول کو جو ہے وہ پھر امت نے استعمال کیا, علماء کسی بات پر متفق ہوتے وہ پھر شریعت کا حصہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اجماع امت کی ایک بہت ہی مختصر سی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن دی ہے, باقی اگر فالو کرنا آپ کے لیے مشکل ہوا ہو تو الحمدللہ ریکارڈنگ موجود ہوتی ہے, اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں. اجماع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی شرعی مسئلے میں تمام مجتہدین کا متفق ہو جانا, تمام نہیں, تمام سے مراد 100% نہیں بلکہ میجورٹی آف دا مجتہدین, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی جو صحابہ کرام تھے जो कि उम्मत के सबसे पहले उलमाए कराम कौन थे? सहाबे कराम थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम कभी कहीं मौजूद नहीं होते थे, तो वहां पर भी सहाबा कराम जो है ना वो अपना इज्तिहाद इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उनके इज्तिहाद की वेरिफिकेशन जो है वो नबी अलैहिस्सलाम खुद भी फरमा दिया करते थे, ठीक है। जब आप सरसरम इस दुनिया से चले गए तो आप सरसरम से वेरीफाई करवाने वाला प्रोसेस सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। तो अब जो है ऐसा नहीं कि अब उम्मत के उलमा इज्तिहाद नहीं कर सकते, अब उम्मत के उलमा का कोई इजमा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, नहीं, अभी भी काबिल कबूल होगा, इसलिए कि कुरान मजीद में इस इजमा का हुक्म मौजूद है, ठीक है। बहरहाल तो यहाँ पर ये सारी बहस जो की क्यों क्यों करी, इंसानी कयास के लफ्ज को समझाने के लिए, ठीक है, कि जो यानी जुज, फिर गजा का जुज्व बदन होना, फिर उसमें से जुज्व खास का नुतफे की सूरत में तब्दील होना, इंसानी कयास की रूह से बड़ा वक्त आता है। यानी हम जब अपने अकल को और अपने मुशाहदे को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि जी इसमें लंबा वक्त चाहिए होता होगा, ठीक है। इसी तरह इसके बाद तीसरा दर्जा नुतफे का गोश्त के टुकड़े में की शक्ल में तब्दील होना, ये भी एक तवील मुद्दत चाहता है, तो उसको भी अल्लाह ताला ने सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन से ताबीर फरमाया, ठीक है। वैसे ना मेरा मेरा एरिया है मेडिकल साइंस, और ना जो है वो बहुत ही दकीक किस्म की कोई रिसर्च करने का मौका मिला है, लेकिन बहुत ही सुपरफिशियली जो जो देखा था, तो आपको पहले भी थोड़ा बहुत बताया था कि नुतफे से, ये जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि नुतफे से अलका में तब्दील होने में तकरीबन 23 से 24 दिन लगते हैं, ठीक है। मेरा मतलब जहां तक जो मुझे समझ में आया वो 23 से 24 दिन का टाइम लगता है। अच्छा, इसके बाद के 3 दौर, अलका से मुदगा, मुदगे से हड्डियां, और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाना, इन सब का थोड़ी थोड़ी मुद्दत में हो जाना मुस्तबाद नहीं, यानी ये इट्स नॉट समथिंग वेरी फार फेच, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये भी ये चीजें जो है वो जल्दी जल्दी हो जाती होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए फिर फा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। बहरहाल आप अगर एम्ब्रियोलॉजी को जाकर के पढ़ें तो उसके अंदर फिर वो कोई कहीं पे 24-26 दिन लिखे हुए होते हैं, कहीं पे जो है वो 6 वीक के अंदर मुर्गा जो है उसके ऊपर जो 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 वो हड्डियों में तब्दील होना शुरू होता है, तो वो 6ठे या 7वें वीक में जाकर के होता है। फिर उसके बाद एकदम से 8वें वीक में जो है ना वो हड्डियों के ऊपर जो है वो पट्टे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी वो मसल्स वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, फिर आखिरी दौर जो नफ़खे रूह यानी रूह फूकने और जिंदगी पैदा करने का है, तो उसको भी लफ्ज सुम्मा से ताबीर फरमाया, क्योंकि एक गैर जी रूह जिमाद में, यानी ये जो एक एक, एक गोया के एक एक एक, एक नॉन लिविंग थिंग टाइप की एक जमी हुई चीज होती है ना, तो उसके अंदर रूह और हयात पैदा करना कयास अकल में बड़ी मुद्दत चाहता है, इसलिए यहाँ फिर लफ्ज सुम मनाया गया, यानी इसको उस लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है जिस लेवल पर जाकर के फिर फरिश्ता आकर के इसके अंदर रूह होता है। और एक यानी हदीस मुबारक से वो 120 दिन का अरसा तकरीबन लगता है ना, चार महीने, राइट। खुलासा ये है, इसी वजह से 4 महीने के बाद अबॉर्शन अगर कोई करवाए ना तो वो फिर कत्ल, शरीयत के अंदर उसके ऊपर कत्ल का हुक्म लगता है, अनलेस कि कोई ऐसी सूरत हाल हो कि माँ की जान को खतरा हो, ठीक है। तो ये, लेकिन ये मुफ्ती आजाद के पास इसकी तफसीलात होती हैं, वो और भी यानी इसमें और भी तफसीलात हैं, जो कि अगर किसी के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको जो है वो अबोर्ट की जेन्युइन यानी एक जरूरत पेश आती है, तो फिर उनको फिर मुफ्ती आजाद से रुजू करना लाजमी है, खुद से जो है ना वो जा करके और बगैर मुफ्ती आजाद से चेक किए हुए खुद से जाकर के अबोर्ट नहीं करवा सकते, खुसूसन इस वजह से कि भाई बेटी है, पता चल गया अल्ट्रासाउंड के जरिए से कि बेटी है, अब जो है उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको उसको जो है वो ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जहालत की बातें है ना, तो इस वजह से जा करके पीटर्स को अबोर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये फिर कत्ल कहलाता है शरीयत के अंदर। इसके ऊपर अगरचे किसी को फांसी नहीं लगाया जा सक नहीं लगाया जाता, और किसी को जो है वो किसी का सर कलम नहीं किया जाता इस वाले कत्ल के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ जो है ना ये कत्ल ही काउंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई ऐसी सिचुएशन है तो वो खुद से जा करके इस किस्म की अबॉर्शन, अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के अंदर तो बाकायदा कानून है कि यहाँ तो कर ही नहीं सकते जब तक कि बाकायदा कोई स्कॉलर्स का कंसेंसस जजमेंट ना मिल जाए। खुलासा ये है कि एक दौर से दूसरे दौर की तरफ इंकलाब जिन सूरतों में इंसानी अक्ल व कयास के मुताबिक देर तलब और मुद्दत का काम था वहां लफ्ज़ सुम्मा से इसकी तरफ इशारा कर दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पर अक्ल व कयास जैसे पीछे भी थोड़ा समझाया है कि यहाँ पर अक्ल व कयास का मतलब जो है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज मुराद नहीं है, बल्कि इवन जो इंसान की ऑब्जर्वेशन है तो उसके हिसाब से भी जो है ना देर तलब और मुद्दत का काम है ये। ठीक है, तो जहां आम इंसानी कयास की रूह से ज्यादा मुद्दत दरकार नहीं थी वहां हरफे फा से ताबीर करके इसकी तरफ इशारा किया गया। ठीक है, दो माह के बाद मिस कैरेज हो जाए अगर, तो क्या वो बेबी कयामत में पेरेंट्स के पास होगा? 2 माह के बाद मिस कैरेज हो जाए या 7 वीक्स के बाद बेबी की हार्ट बीट सुनी जा सकती, मीन्स उससे लाइफ उसे लिफ्ट उसे लाइफ मिल जाती है 7th वीक के बाद। जी, ये इतनी तफसीलात मुझे नहीं पता, भाई दिन का एरिया भी है ज्यादा। और अब 2 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाए, हमने तो उलमा से यही सुना है कि जी मिसकैरेज जो हो जाता है ना तो वो उसमें ये नहीं है कि जी 7वें महीने में मिसकैरेज हुआ कि दूसरे महीने में मिसकैरेज हुआ, जो बेबी अबॉर्ट होता है तो फिर वो कयामत के दिन यानी माँ बाप की शफाअत करता है। ठीक है, तो इसमें कोई मेरे इल्म में नहीं है कि एग्जैक्टली इतने वीक्स के बाद होगा तब वो माँ बाप के लिए शक्ति बनेगा वगैरह साजिश करते हैं। जो लाइफ में जाने की बात है वो 7 वीक्स में हार्ट बीट नहीं, 7 वीक्स 49 डेज बनते हैं ना, 7 7 49, तो 49th डे जो है ना इसके बारे में जो हदीस मुबारका के अंदर मिलता है वो ये कि 42nd डे पर, ठीक है, 40 प्लस 2, इस पर जो है ना वो एक फरिश्ता आता है और वो उसके कान खाल गोश्त हड्डी वगैरह राइट ये सब बना देता है, ये हदीस मुबारका के अंदर है, लेकिन रूह फूंकने का जो है ना ये यानी इस वक्त रूह फूंकने वाला मामला मामला नहीं है, लेकिन कान बन जाते हैं। सबसे पहले ये भी बड़ी कुरान का एक मुअज्जा है कि कुरान ने जो 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 तख्लीक की बात करती करता है तो यानी सम का जिक्र हमेशा पहले करता है, कान का जिक्र, और वाकई अल्लाह ताला तख्लीक में जो है वो कान सबसे पहले बनाता है। तो अब वो ये सारी चीजें बन जाती हैं तो भाई हार्ट बीट वाला प्रोसेस भी शुरू हो जाता होगा, लेकिन ये जो हार्ट बीट है इसका जरूरी नहीं है रूह के साथ भी ताल्लुक, ठीक है, तो ये एक फिजिकल चीज भी है, यानी हार्ट जो है वो पंप होना शुरू हो गया ना तो वो फिजिकल अंदर जो चेंजेस हैं वो तो आ रही है ना, तो उसके तहत जो है वो हार्ट बीट किसी वजह किसी तरह स्टार्ट हो जाती होगी, इसका रूह के साथ जरूरी रिश्ता नहीं है कि जी रूह आई तब हार्ट बीट शुरू हुई। अगर यूएसजी से पता चले कि अल्ट्रासाउंड वाला पता चले कि बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो सकता है तो क्या ऐसी सूरत में अबॉर्ट करना अलाउड है? देखिए इसमें तफसीलात हैं, इसी वजह से कहा था कि इसके लिए जो है ना बाकायदा यानी डॉक्टर्स और मुफ्ती हजरात दोनों से रिव्यू करना होता है कि कितने जैसे कि यानी कितनी पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि बच्चा जो है वो एबनॉर्मल होगा। अच्छा, बच्चा एबनॉर्मल होने का भी ये नहीं है भाई, बच्चा एबनॉर्मल है तो वो भी तो औलाद है ना, ये कोई थोड़ी कि बच्चा एबनॉर्मल है तो अब आप उसको कत्ल कर देंगे उठा करके, ऐसा नहीं है, इतना इतना ऐसा मामला भी नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है ना किस किस किस्म की एबनॉर्मैलिटी है, तो ये सब डिटेल्स हैं, तो इस वजह से ना ये आज होती है आपको बार बार बोल रहे हैं, इसके लिए मुफ्ती हजरात से पूछना होता है। और जाहिर है ऐसे मुफ्ती से पूछें कि जिसके पास से थोड़ी अंग्रेजी जुबान की भी नॉलेज हो और कोई साइंटिफिक स्टडीज भी उनके पास हो, ऐसे अलहमदिल्ला मुफ्ती आजाद मौजूद हैं। ठीक है, उनसे जा करके पूछेंगे, उनको मेडिकल जो जो फाइंडिंग्स हैं वो भी बताएंगे, और फिर उसकी बुनियाद पर वो बताएंगे। प्लीज रिपीट व्हाट, 2 माह के बाद मिसकैरेज, ये वाली बात ये नहीं पता, लेकिन जो आम तौर पे सुना है उलमा से, तो वो हर मिसकैरेज पर ही सुना है कि जो जिस माँ का भी मिसकैरेज हो जाता है तो वो बच्चा जो है ना वो उसके लिए शफात करेगा। खुलासा, अच्छा तो फिर हम पढ़ रहे थे कि इसलिए ये जो उन्होंने लिखा, खुलासा ये है कि एक दौर से दूसरे दौर की तरफ इनकलाब, जिन सूरतों में इंसानी अकलो कयास के मुताबिक देर तलब और मुद्दत का काम था, वहां लफसुम्मा से इसकी तरफ इशारा कर दिया गया, और जहां आम इंसानी कयास की रूह से ज्यादा मुद्दत दरकार नहीं थी, वहां हर्फ फास से ताबीर करके उसकी तरफ इशारा कर दिया गया। इसलिए इस पर उस हदीस से शुबो नहीं हो सकता कि जिसमें यह बयान फरमाया है कि हर दौर से दूसरे दौर तक मुंतलिब होने में 40 40 दिन सर्फ होते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की कुदरत एक आमिला का काम है जो इंसानी कयास के ताबिक नहीं है। तो एक हदीस मुबारक में इस तरह का भी मजमून मिलता है कि एक दौर से दूसरे दौर में 40 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अब ये जो 40 दिन है ना, इनका इनकी डिटेल क्या है? इनकी डिटेल सिर्फ इतनी तो अवेलेबल है कि एक और हदीस से मुबारक से 40 बल्कि 42 दिन के बाद फरिश्ते का आना, कान खाल गोश्त और हड्डी, पट्ठों और हड्डी का बनाना, ठीक है ना, ये तो यानी ये तो डिटेल अवेलेबल है, लेकिन फिर उसके बाद अगले 40 दौर में कौन सी वाली तब्दीलियां आती हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम हो सकता है किसी और स्टैंडर्ड के तहत तो बात फरमाई है, जो कि अभी हमें नहीं पता कि हर हर दौर से यहाँ पर उस हदीस मुबारक से क्या मुराद है। ठीक है, तो अभी इतनी तहकीक नहीं है कि अच्छा पहले पहले 40 दिन में तो ये तब्दीली आ गई, अब अगले 40 दिन में कौन सी वाली तब्दीली आ रही है, फिर उसके बाद अगले 40 दिन में कौन सी वाली तब्दीली आ रही है, ये अल्लाह का जो भी निज़ाम है ये अभी फिलहाल हमारे सामने इसकी तफसील मौजूद नहीं है। लेकिन एक उमूमी बात जो कि बहुत सारे दूसरे शवाहिद से हमें पता चलती है वो ये है कि 40 दिन जो है ना, ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम रखा है कि जिसके अंदर जो है ना वो मेजर तब्दीलियां आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हमारे मशायख जो हैं वो और दलाइल भी पेश करते हैं कि जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए तूर के ऊपर रोजा रखने के लिए कहा था, फिर 40 दिन के लिए बुलाया, फिर 40 दिन के और भी चीजें मौजूद हैं, और इसी चीज को फिर इस्तेमाल करते हुए जो 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 मशायख-ए-उज़्ज़ाम 40 दिन के चिल्ले बताते, जिसको जिसकी वजह से उसको चिल्ला भी कहा जाता है, चिल्ला का वर्ड जो है ना ये 40 से निकला, तो 40 दिन के लिए यानी चिल्ले का मतलब होता है यानी ये नहीं कि आप चक्कर काट रहे हैं कहीं पे, आप तवाफ करना शुरू हो गए, ये मुराद नहीं है, बल्कि चिल्ले का मुराद ये है कि आप किसी जगह पे चले जाएं और 40 दिन तक एक तरतीब के ऊपर गुजारें। ठीक है, यानी जिक्र कर रहे हैं 40 दिन बैठ करके, खानकाह के अंदर बैठे हुए हैं, इबादतें कर रहे हैं 40 दिन तक, ये राइट, तो ये 40 का जो अदद है, फिर मशाइख ने इंसान की इस्लाह के लिए भी इसको इस्तेमाल किया, और हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने जब तबलीगी जमात की तरतीब बनाई, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये 40 दिन का, भाई अल्लाह के रास्ते में 40 दिन के लिए निकलो, 40 दिन तक हमें एक तरतीब पर रहेंगे तो फिर जो तब्दीली आएगी ना वो रासिख हो जाएगी, वरना तब्दीली तो एक दिन में आ जाती है, आप जो है वो तबलीगी जमात के साथ जो है वो जब निकले तो आपने अपना जो जो पैंट सूट था वो उतार करके जो है वो शलवार कुर्ता पहन लिया, आपने जो है वो अपने रोजमर्रा के मामूलात आपके चेंज हो गए, है ना, पहले आप जो है टूथब्रश कर क्या करते थे, अब आपने मिसवाक करनी शुरू कर दी, अब आपने ऐसे ओढ़ना बिछाना ऐसे सोना शुरू कर दिया, ये तब्दीलियां तो एक दिन में आ जाती हैं, लेकिन 40 दिन तक जब इस तब्दीली की हालत में इंसान रहता है तो उसके ऊपर रंग चढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो तब्दीली वाला कॉन्सेप्ट है ना 40 दिन से, इसकी बहुत सारी दलाइल हमारे ट्रेडिशन के अंदर मौजूद है, तो इसी तरीके से बच्चे की पैदाइश के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 दिन वाला फरमाया तो उसके अंदर भी ये यकीनन कुछ यानी कुछ सॉलिड रीजंस होंगे। पाकिस्तान में थैलेसीमिया किड्स का अबॉर्ट करना पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक लीगल है, क्या इसके लिए किसी मुफ्ती से भी पूछना पड़ेगा? ये या स्टेट के लॉ को एक्सेप्टेबल समझा समझा जाएगा, स्टेट के लॉ को एक्सेप्टेबल समझा जाएगा। भाई ये आप पूछ रहे, मुझे नहीं पता इसका, ठीक है। थैलेसीमिया या किसको वोट करना चाहे पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में अच्छा गुमान अमूमी तौर पर तो यही है कि जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई चीज जो है ना वो कानून नहीं बन सकती अगर वो शरीयत और सुन्नत के खिलाफ हो, और बाकायदा एक शरीयत क्या कहते हैं उसको, एडवाइजरी बोर्ड मौजूद होता है जो कि फिर इन सारी चीजों को जो है वो चेक भी करता रहता है। तो इस वजह से गुमान तो यही है कि ये जो कानून पास हुआ है पाकिस्तान के अंदर तो ये शरीयत के खिलाफ नहीं होगा। पहले से मुफ्ती हजार इसको कंफर्म और वेरीफाई कर चुके होंगे, लेकिन अगर फिर भी कुछ पता नहीं होता ना, तो इधर उधर से भी कुछ हरकतें हो जाती हैं, तो अपने इत्मीनान के लिए मुफ्ती हजार से पूछ भी रह जाए तो भी इसमें मुजायका नहीं है। अच्छा, तख्लीक इंसानी का आखिरी मुकाम यानी इसमें रूह व हयात पैदा करना, तो इसका बयान कुरान करीम ने एक खास और मुमताज अंदाज से इस तरह फरमाया, थुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, यानी फिर हमने उसको एक खास किस्म की और पैदाइश अता की। अंशा युनशियो, इंशान का मतलब बढ़ोतरी, बढ़ा ग्रोथ जिसको कहते हैं। तो इस इम्तियाज बयान की वजह यह है कि पहले 6 दौर तख्लीक के आलम अनासर और मादियात से, मादियात यानी जो मटेरियल फिजिकल चीजें होती हैं, अनासर अरबा, आग हवा मिट्टी पानी, ठीक है ना, तो इन 4 अनासर से और यानी मादी चीजों से मिलकर के बने थे और उनमें इनकलाब व तब्दील से मुतालिक थे, ये 6 जो स्टेजेस थे, ठीक है। तो ये मटेरियल चीजें ही जो है ना वो अपने शेप्स एंड फॉर्म्स जो है वो चेंज कर रही थी, और ये आखिरी 7वां दौर दूसरे आलम यानी आलम अरवाह से रूह को इसके जिस्म में मुंतकिल करने का दौर था, इसलिए उसको खलकन आखर से ताबीर किया गया, ठीक है, अनदर फॉर्म, ठीक है। तो इतनी तो माशाल्लाह एक्यूरेसी मौजूद है कुरान मजीद में। रूहे हकीकी और रूहे हैवानी, अब यहाँ खलकन आखर की तफसीर हजरत इब्ने अब्बास, अब ये थोड़ी सी एक डिफरेंट बहस है, इसमें शायद थोड़ा और टाइम लगे, कि हजरत इब्ने अब्बास मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह, शौबी रहमतुल्लाह, अकरमा रहमतुल्लाह अलैह, वहाक रहमतुल्लाह अलैह, आलिया रहमतुल्लाह अलैह वगैरह ने नफखे रूह से फरमाई है, ठीक है। खलकन आखिर से मुराद के रूह फूंकी गई इसके अंदर, ठीक है ना, इस एम्ब्रियो में, जायगोट में, मुज़गा में, जो भी जो उसकी फॉर्म बनी। तो तफसीर मजहरी में है कि गालिबन मुराद इस रूह से रूह हैवानी है कि वो भी मादी और एक जिस्म लतीफ है जो जिस्म हैवानी के हर हर जुज में समाया हुआ होता है। तफसीर मजहरी काजी सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह, जो बरेसगीर के बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, ठीक है, उनकी लिखी हुई तफसीर है। उसका नाम उन्होंने मजहरी क्यों रखा, क्योंकि उनके शेख थे हजरत मजहर जानी जाना रहमतुल्लाह अलैह, जो कि नक्शबंदी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, देहली के अंदर उनका कयाम था। इनका दौर हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये हम असर थे, ठीक है। तो हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह से हजरत काजी सनाउल्ला पानीपति जो है वो बैत थे और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, तो जो तफसीर उन्होंने लिखी ना उस तफसीर का नाम अपने शेख के नाम के ऊपर तफसीर मजहरी रखा, ठीक है। तो इस तफसीर के अंदर चूंकि ये लोग जो थे इनका बड़ा ताल्लुक जो है वो रूहानियत के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुक था, और यानी तज़किया नफ्स, तस्विया रूह वगैरह का जो जो एरिया था वो इनकी यानी बड़ी खासियत थी इन लोगों की, तो इस वजह से अपनी इस तफसीर के अंदर जो है ना वो रूह के लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा बातें मिलती हैं, ठीक है। यानी हर तफसीर की ना कुछ कुछ खासियत होती है, किसी के अंदर अकलियात बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर जो है वो यानी अरबी ग्रामर की जो है वो तफसीलात बहुत ज्यादा है, किसी के अंदर कुछ ज्यादा है, तो इस वाली तफसीर की ये खास बात है तफसीर मजहरी की, रूहानियत के बहुत ज्यादा इसके अंदर मजामीन को छेड़ा गया है। तो
फरमाया कि ये जो रूह मुराद है ना, कि रूह जो फूकी जा रही होती है, ये रूह जो है ये अगरचे के रूह है लेकिन इसकी एक मादी हकीकत भी होती है, ठीक है, यानी मादियत मटेरियल के साथ जो है ना इसका एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है, लेकिन लेकिन ये मादे की तरह से कसीफ नहीं होती, मादे की तरह से जो है ना ये एक एक गाढ़ी चीज नहीं है। मादा जैसे कि हम समझते हैं सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, सॉलिड तो सबसे ज्यादा हार्ड और यू नो फिक्स किस्म की चीज है सॉलिड्स, लिक्विड जो है वो भी अच्छा खासा उनका एक एक एक, एक होती है उसके अंदर भी यानी गाढ़ापन होता है, लेकिन उसके अंदर एक फ्लो करने वाली सलाहियत भी होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है, माए जो कहलाता है उर्दू में। और जो जो गैस होते हैं, बुखारात होती हैं गैसेस, तो उनकी भी एक मटेरियल यानी मॉलिक्यूल, उनके भी जो है वो आपस में ज्यादा क्लोज होते हैं, लेकिन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के मुकाबले में काफी लूसन अप होते हैं, तो इस वजह से जो गैसेस होती हैं इनकी कोई शक्ल सूरत नजर नहीं आ रही होती। हाँ, स्मेल ज्यादा से ज्यादा इनकी आ रही होती है और इनकी एक एक मौजूदगी होती है, हर तरफ गैसेस मौजूद है, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो या दूसरी गैसेस हो, ये बाकायदा एक एक एक, एक, एक मटेरियल जिस्म लगती है। ये रूह जो है ना, ये फरमा रहे हैं कि इन तीनों से यानी गैसेस से भी ज्यादा डेलिकेट चीज है, गैस से भी ज्यादा डेलिकेट, ठीक है, तो गैस जो है ना ये तो बाकायदा एक एक जगह ले लेती है ना, ठीक है, जैसे कि गुब्बारा बलून के अंदर जब आप एयर ब्लो करते हैं तो वो गैस होती है, ठीक है, जो आप अपने मुंह से उसके अंदर फूंक रहे होते हैं, लेकिन उसका कितना बाकायदा एक एक फिजिकल शेप होता है कि गुब्बारा जो है वो फूल जाता है और टाइट हो जाता है, भाई उसके अंदर आपने पानी तो नहीं डाला, उसके अंदर आपने कोई लकड़ी तो नहीं डाली, गैस डाल रहे हैं ना, लेकिन गैस का शेप कैसे गुब्बारे के अंदर आपको नजर आता है ना, राइट। ये रूह जो है ये ऐसी चीज नहीं है कि अब रूह जो है वो जब इंसान के जिस्म के अंदर फूंक दी गई है तो इंसान का जिस्म जो है वो फूल जाएगा, राइट, कुछ उसके अंदर जो है वो यानी ऐसी चीजें पैदा हो जाएंगी, हत्ता कि जब रूह निकल जाती है तो बेशक मूवमेंट खत्म हो जाती है इंसान की, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जैसे गुब्बारे के अंदर से हवा निकल गई तो गुब्बारा बिल्कुल पिचक जाता है, तो इंसान के अंदर से रूह निकल गई तो इंसान भी पिचक गया, ऐसा तो नहीं होता ना, राइट। तो रूह के मौजूद रूह का जो जिस्म है, इस वाली रूह का जो जिस्म है ये गैस से भी ज्यादा, ठीक है ना, अन यानी इनटेंजिबल किस्म की चीज है, गैस से भी ज्यादा जो है वो यानी आप उसको फील नहीं कर सकते, उसको गैस को तो फील कर सकते हैं, ठीक है, और ये इंसान के यानी जिस्में हैवानी यानी इंसान का जो फिजिकल मटेरियल जिस्म होता है इसके एक एक जुज के अंदर समाया हुआ होता है, जिसको अतिबा और फलासफा रूह कहते हैं, ठीक है, यानी इवन जो 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 जो, जो तबीब ट्रेडिशनल जो डॉक्टर्स होते थे और जो फिलोसोफर्स, ये फिलोसोफर्स क्या होते हैं, ये फिलोसोफर्स को आप ऐसे समझ लें कि जैसे आजकल साइंसदान होते हैं ना, साइंटिस्ट, तो प्री साइंटिफिक एरा के अंदर जो गौर फिक्र करने वाले और मुशाहिदा करने वाले और उन मुशाहिदों की बुनियाद पर कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव करने वाले और किताबों के अंदर उनको लिखने वाले, ये लोग जो हैं वो पहले साइंटिस्ट नहीं कहलाते थे बल्कि ये फिलोसोफर्स कहलाते थे, जैसे एरिस्टोटल, प्लूटो और बहुत सारे और यूनानी और मिस्र के अंदर से बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं, तो इन लोगों को फिलोसोफर्स कहा जाता था। तो ये उस जमाने के साइंसदान थे जिस जमाने में इंस्ट्रूमेंटेशन और टेक्नोलॉजीज और इमेजेस, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सारी चीजें जब डेवलप नहीं हुई थी ना, तो उस वक्त के ये लोग थे, ठीक है। अच्छा, अब ये भी जो है ना, ये इतना तो हमें पता है कि ये लोग जो थे ये ऐसे ऐसे करते थे, इनकी किताबें भी मौजूद हैं, यूनानी फलसफा बहुत सारी किताबें आज भी मौजूद हैं, ठीक है, तो इनके बारे में तो हमें पता है कि इनको कितना पता था, इन्होंने अपनी किताबों के अंदर कितना लिखा, कितनी बातें उनके अंदर से बाद में गलत साबित हो गई, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि इनके अलावा कुछ और भी लोग होते थे माजी के अंदर, کہ جن کے پاس کسی قسم کے شاید انسٹرومنٹس بھی ہوتے تھے, رائٹ, ان کی تفصیلات ہمارے پاس ہیں نہیں, لیکن کچھ ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جو کہ اس طرف دلالت کرتے ہیں کہ ماضی میں بہت سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹس رکھنے والے لوگ بھی ممکن ہے کہ تھے. مثال کے طور پر احرام مصر جن لوگوں نے بنایا ہے, اب یہ احرام مصر کے جو 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 اس کے اندر راکس لگے ہوئے ہیں, سٹونز جو لگے ہوئے ہیں نا, یہ بغیر یعنی انسان اس زمانے میں کوئی جن ایسا نہیں تھا کہ جنہوں نے احرام مصر بنایا. بھائی ہیکل عثمان, ہیکل سلیمانی کا تو پتا ہے کہ جی جنہوں نے بنایا, احرام مصر کا جنہوں نے بنانا تو ثابت نہیں ہے, اس کا تو انسانوں کا ہی بنانا ثابت ہے نا. تو بھائی ان انسانوں نے کیسے بنایا, وہ کوئی ایسے کوئی تھوڑی تھے, ڈائنوسور سے بھی زیادہ بڑے بڑے انسان, رائٹ, وہ سائز کے اندر کوئی زیادہ بڑے انسان نہیں تھے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے نا وہ, ٹھیک ہے. انہوں نے کیسے احرام مصر بنائے, کوئی تو ان کے پاس یعنی مشینری تھی, کچھ تو ایسا تھا کہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے بھاری بھاری جو ہیں وہ راکس کے ذریعے سے انہوں نے احرام مصر بنائے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بابلون کے باغات وغیرہ, یہ بھی جو ہے وہ بہت پرانے زمانے کی چیزیں. اچھا ابھی ریسنٹلی جو ہے نا وہ ایک اور چیز سامنے آئی ہے عجیب, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, کیونکہ ہم کلاسز کے اندر اس طرح کی باتیں بھی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ وہ اندازہ ہو جائے اور کچھ اپنے اور اپنی اولاد کی حفاظت کا بھی کچھ انتظام کر لیں, ٹھیک ہے. یہ جو ریسنٹلی ایک چیز بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, ورچوئل ریالٹی, میٹاورس, میٹا, فیس بک, ٹھیک ہے. فیس بک جو ہے جو کمپنی ہے جس نے کہ یہ فیس بک بنایا, اور پھر اس کے بعد ٹویٹر بھی اس کے قبضے پہ آ گیا, پھر واٹس ایپ بھی اسی کے اونرشپ میں ہے. تو یہ جو فیس بک ہے اس کا, اس کے اونر نے اس کا نام جو ہے وہ چینج کر دیا ہے, میٹا نام کی کمپنی بنا دی ہے. اور میٹا کمپنی جو ہے وہ جو اس وقت دنیا کے اندر ایک پروجیکٹ کر رہی ہے, وہ اس کا نام ہے میٹاورس, ٹھیک ہے. ورس کہاں سے آیا, یونیورس سے, یونی کو ہٹا کر کے اس نے میٹا کا لفظ لگا دیا ہے اور ورس جو ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے, تو اس کو وہ کہتے ہیں میٹاورس. یہ میٹاورس کیا چیز ہے, یہ ایک ورچوئل دنیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ یعنی فزیکل نہیں ہے لیکن ورچوئل ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملاقات کریں گے, ایسے یعنی آپ کی بیٹھکیں ہوا کریں گی, ایسے ملنا جلنا ہوا کرے گا کہ دوسرا بندہ جو ہے نا وہ فزیکلی کہیں اور ہے دنیا کے اندر, لیکن ورچولی وہ آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اس یہ بہت پرانی ٹیکنالوجی ہے ایکچولی, یہ ہولوگرام جس کو کہتے تھے, ٹھیک ہے. ہولوگرام کیا, اس کی وہ ایک گڑیا ناچ رہی ہوتی تھی, وہ لائٹس اس طرح سے ڈالتے تھے ایک جگہ کے اوپر کہ وہ لائٹس جو ہے نا وہ باقاعدہ یعنی ایک ایک امیج بنا لیتی تھی, اور وہ ایسا لگتا تھا جیسے ایک اصل میں گڑیا ہے, حالانکہ وہ اصل میں ہی ہوتی تھی, وہ صرف لائٹس پڑی ہوتی تھی تین مختلف ڈائریکشن سے, ٹھیک ہے. تو یہ اس ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ ایڈوانس کیا گیا ہے کہ اب یہ جو ہے وہ پورا ایک گویا کہ میٹا فزیکل یونیورس بن گئی, اور یہ آلریڈی اس پہ بہت زیادہ کام ہو چکا ہے. بس فرق یہ ہے کہ ابھی عوام الناس کے ہاتھ میں اتنی زیادہ یہ آئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے اس کے اوپر. ابھی بظاہر تو انہوں نے شور مچا دیا دنیا کے اندر کہ جی یہ پروجیکٹ ناکام ہو گیا ہے, رائٹ, یہ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. اور جو ہے وہ کیا نام ہے, مارک زوکربرگ جو کہ فیس بک کا جو اونر ہے نا, اس کو بہت بڑا لاس ہو گیا ہے نا, گویا کہ یہ جو ہے نا ڈمپ ہو گیا یہ والا پروجیکٹ. لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میڈیا کے اوپر آئی ہوئی خبروں کو فیس ویلیو کے اوپر ٹرسٹ نہ کیا کریں. ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں, ہم اعتماد کر لیتے ہیں, جو اعتماد کے قابل نہیں ہیں ان کے اوپر ہم اعتماد کر لیتے ہیں, اور اتنا ذوق اور شوق کے ساتھ اعتماد کرتے ہیں کہ عقل حیران نہیں رہ جاتی بلکہ غصہ آتا ہے اور بد دعا دینے کا دل چاہتا ہے. دل چاہتا ہے کہ بد دعا دو ایسے شخص کو جو کہ اتنے زیادہ جھوٹے سورس کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہے, اتنا اتنا یعنی اتنا برا معاملہ ہے یہ ہمارا, اتنا برا معاملہ ہے ہمارا. اللہ کے نبی کے اوپر اعتماد ہمارا متزلزل ہوا ہوا ہے, حدیثوں اور قرآن کے اوپر ہمارا اعتماد متزلزل ہوا ہوا ہے, وہاں شک میں پڑے رہتے ہیں. اور جھوٹوں مکاروں کے اوپر تو ایسے اعتماد کرتے ہیں جیسے کہ یہ پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں یا یہ کتنے نیک اور ہمارے خیر خواہ قسم کے لوگ ہیں. جو نیوز میں آتا ہے اس کو آمنا و صدقنا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال تو اب یہ خبر یہ آئی ہوئی ہے کہ جی وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا ہے اور اس کو لاس ہو گیا ہے, اور لوگ بڑے خوش ہو گئے, اچھا جی لاس ہو گیا, ختم ہو گیا اب تو. یہ نہیں جی, یہ بھی ایک دجال کا فریب ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ کسی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کسی اور چکر میں. بہرحال تو یہ جو اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے اس کو ایسے نہیں ختم کرنے والے ہیں. یہ تو یہ میٹا یونیورس جو ہے نا یہ تو لے کر کے آئیں گے, یہ بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ تو آئے گا. anyway, مقصد آپ کو بتانے کا یہ نہیں ہے کہ جی میٹا کیا چیز ہوتی ہے, مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میٹا والوں نے جو اپنے اشتہار بازی شروع کری تھی نا اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ لوگوں نے تحقیق کر لی اور وہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اشتہاروں کے اندر ایسے ایسے امیجز دکھائے ہیں کہ جو کہ آج تو ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے نظر آتے ہیں لیکن ہزاروں سال پہلے بھی جو ٹیکسٹ موجود تھے نا ان کے اندر بھی وہ امیجز موجود تھے. اس زمانے میں ان لوگوں نے کیسی دیکھی وہ چیزیں, ہزاروں سال پہلے کہ جو وہ دستاویزات موجود ہیں ملی ہیں کہیں کہیں ان کے اندر وہ شکلیں موجود ہیں جو شکلیں آج سائنسدانوں نے ٹیلیسکوپس کے ذریعے سے ان کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے, تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں بھی ٹیلیسکوپس ٹائپ کی کوئی چیزیں موجود تھیں کہ جس کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ ایسی آبزرویشنز کر لیا کرتے تھے, جیسے اہرام مصر جیسی کنسٹرکشن جو ہے وہ اتنے ہزاروں سال پہلے انسانوں نے کری ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ فلاسفرز, بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, فلاسفرز سے. ٹھیک ہے, تو ایک تو آپ کو بتا دیا نا کہ کچھ فلاسفرز تو وہ ہیں کہ جن کی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں, جن کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کیا انہوں نے صحیح کیا کیا انہوں نے غلط کیا, لیکن کچھ ایسے بھی ان نون قسم کے فلاسفرز اس زمانے کے تھے جو کہ پتہ نہیں شاید ایکچوئل سائنٹسٹ بھی تھے جن کے پاس انسٹرومنٹس وغیرہ بھی وغیرہ ہوتے تھے, خیر ہمیں نہیں پتا اس کا. تو اس کی تخلیق بھی تمام اعضائے انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے, اس لیے اس کو لفظ ثم سے تعبیر فرمایا ہے. اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے وہیں سے لا کر اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالی اپنی قدرت سے پیدا فرما دیتے ہیں. یعنی اعضائے انسانی کی تخلیق کے بعد جو ہے نا پھر یہ روح اس کے اندر پھونکی جا رہی ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو روح ہے, روح حیوانی جو کہ جسم کے اندر پھونکی جا رہی ہوتی ہے, تو ایک ہے اصل روح, روح حقیقی جو کہ عالم ارواح میں ہی رہتی ہے, عالم ارواح ہی میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں بتایا نا کہ انسان کا دل جو ہے وہ بین الاصابع رحمان, رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے, وہ اس دل کو جہاں چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں. جب ہی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں نا, یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, اے دلوں کو پھیر دینے والے ہمارے دل کو جو ہے وہ اپنی طاعت کے اوپر پھیر دیجئے. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں جو ہے وہ توفیق ہے, اسی کو کہتے ہیں توفیق کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے جو نبی علیہ السلام کی مراد ہے قدرت کی انگلیاں, ہمیں اس کی شکل شیپ نہیں پتا, لیکن اللہ تعالیٰ جو دلوں کو پھیرتے ہیں نا تو یہ دل جو ہے وہ باقاعدہ روح کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو دل کو پھیر رہے ہوتے ہیں نا یہ اصل میں اس روح کے اندر جو دل ہوتا ہے جو کہ عالم ارواح ہے وہاں پر پھیر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر جو عالم ارواح میں جو روح موجود ہے نا اس روح کا ایک شیڈو پڑتا ہے, ایک سایہ ہے اس کا, وہ سایہ جو ہے نا وہ جسمانی دنیا کے اندر जो जिस्म में रूह मौजूद होती है वो होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर जो रूह है ना, ये असल में रूह हकीकी नहीं है। रूह हकीकी तो आलम अरवाह में है, वहां का ये शेडो है। और शेडो का मामला जैसा हम जानते हैं कि असल चीज जब हिलती है तो साथ साथ उसका शेडो भी हिलता है ना। भी बच्चे जो है वो खेल भी करते हैं कि जी वो कोई 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 टॉर्च जल रहा है तो टॉर्च के सामने अपना हाथ लेकर के आ जाते हैं। अब हाथ से जो है ना वो कोई खरगोश बना रहा है, कोई हाथ को जो है वो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो दीवार के ऊपर उसका शेडो पड़ रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से रूह हकीकी का शेडो जो है वो हमारी रूह ये जो जिस्मानी है इसके अंदर पड़ रहा होता है, ठीक है। क्या चीज रिपीट कर देंगे, ये भी तो बता देना। रूह हकीकी देखें, आपके सामने किताब भी होनी चाहिए, लिंक भेजते हैं ना व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, या पहले भेज रहा था, या अगर नहीं भी अगर आपके पास लिंक तो गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लें तफसीर मारुफुल कुरान, ठीक है, उसके जिल्द नंबर 6, तो वो किताब अपने सामने रखा करें, हम उसी में से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीट करने के लिए जो आप कह रही हैं वो अगर ये है कि बस आलम अरवाह जो कि आसमानों पर है वहां पर हमारी रूह हकीकी मौजूद है, और जिस्म के अंदर जो रूह फरिश्ता आके फूंकता है ना, ये दरअसल उस रूह का एक साया होता है खाली। तो उधर ऊपर वाली रूह के अंदर जो तब्दीलियां आ रही होती हैं वो तब्दीलियां इस रूह के अंदर भी मुनअक्किस हो रही होती हैं, ठीक है। जैसे आप किसी आईने के सामने खड़े हो तो अब आप अपने सर को अपने हाथ को ऊपर करें तो आईने में जो आपका अक्स है उसका भी हाथ ऊपर हो जाएगा। फिर आप जो है वो अपनी कंघी करें तो आईने में जो अक्स है वो भी अपने सर को कंघी करना शुरू हो जाएगा ना। तो अक्स का यही मामला होता है, ठीक है ना। तो अक्स का लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, आप इसके लिए साए का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जिस्म हमारा जो जिस्म है उसके अंदर जो रूह मौजूद है ये सिर्फ एक अक्स या सिर्फ एक साया है असल रूह का, जो कि आलम अरवाह में वहां पर मौजूद है आसमानों पर, ठीक है, सातवें आसमान के ऊपर। अच्छा, तो फरमाते हैं कि उसकी तखलीक भी, यानी जो ये जो जिस्मानी रूह है ना उसकी तखलीक भी तमाम आज़ा इंसानी की तखलीक के बाद होती है, इसलिए उसको लफ्ज सुम्मा से ताबीर फरमाया है। और रूह हकीकी जिसका ताल्लुक आलम अरवाह से है, वहीं से लाकर इस रूह हैवानी के साथ उसका कोई राबता हक ताला अपनी कुदरत से पैदा फरमा देते हैं। यानी एक है राबता रूह हकीकी का इस रूह जिस्मानी के साथ, जिसकी हकीकत का पहचानना इंसान के बस का नहीं है, ठीक है ना। वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ा सा इल्म दिया हमें रूह के बारे में, कलील इल्म दिया। अब जब अल्लाह ने दिया ही नहीं तो आप लगे रहें कुछ भी करते रहें, आपको नहीं समझ में आने वाली बात, ठीक है ना। तो इस रूह हकीकी तक की तखलीक तो तमाम इंसानों की तखलीक से बहुत पहले ही उन्हें पहले हुई हुई है, ठीक है। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, फिर उनकी पीठ के ऊपर अपनी कुदरत का हाथ रखा, तो उस वक्त सारी की सारी रूहें जो हैं वो क्रिएट हो चुकी थीं। उन्हीं अरवाह को हक ताला ने अजल में जमा करके, यानी बिल्कुल इब्तिदा में, अजल से मुराद यहाँ पर बिल्कुल इब्तिदा इंसानियत की, उसमें जमा करके अलस्तु बिरब्बिकुम फरमाया, और सब ने बला के लफ्ज से अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार किया, बला या रब, ठीक है, कि बेशक आप हमारे रब हैं। अल्लाह ने पूछा क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, सबने जवाब दिया बेशक आप हमारे रब हैं। हाँ, इसका ताल्लुक जिस्म इंसानी के साथ तखलीक आज़ाए इंसानी के बाद होता है, ठीक है। गोया कि एक एक्सटेंशन दे दी जाती है, जब हमारा जिस्म तखलीक हो जाता है तो उस वक्त उसकी एक एक्सटेंशन दे दी जाती है ना भाई। जैसे घर के अंदर एक्सटेंशन कॉर्ड्स होती है ना, तो भाई वो एक्सटेंशन कॉर्ड जो है वो एक तार के जरिए से कनेक्टेड होती है दीवार में जो सोर्स होता है उससे, ठीक है। तो असल में जो 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 इलेक्ट्रिक पावर आ रही होती है वो तो दीवार के सॉकेट में आ रही होती है, उसको एक्सटेंड कर देते हैं इस्त्री तक, है ना भाई। इस्त्री स्टैंड जो है वो बहुत दूर है दीवार से, तो आप एक एक्सटेंशन कॉर्ड लगा देते हैं और वो पावर को एक्सटेंड करते हुए इस्त्री तक पहुंचा देता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये روح بھی جو ہے نا اس کی ایک ایکسٹینشن ہو جاتی ہے ہمارے جسموں کے اندر. ٹھیک ہے, اس جگہ نفخ روح سے اگر یہ مراد دی جائے کہ روح حیوانی کے ساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس وقت فرشتہ روح پھونکتا ہے اسی وقت یہ ایکسٹینشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور در حقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے. جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے, اور جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے. وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے, گویا کہ ایک ڈسکنیکشن ہو جاتا ہے موت کے وقت. صحیح ہے, اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو روح حقیقی کے جو ایکسٹینشن ہے نا وہ تو واپس لے لی جاتی ہے. اس کو گویا کہ جیسے کہ آپ تار کو کھینچ لیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ روح حقیقی کی جو ایکسٹینشن آئی ہوئی ہے وہ کھینچ کر کے باہر نکل جاتی ہے, اور روح جسمانی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ پورشن وہ ہمارے جسم میں رہتا ہو, موجود رہتا ہو. اس لیے کیونکہ جب قبر میں جاتے ہیں, عالم برزخ میں جاتے ہیں, تو پھر جو ہے نا ایک طرح کا ایک کنیکشن پھر سے پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ عالم, باقی اس کی تفصیلات اللہ بہتر جانتا ہے. اس روح حقیقی سیم ایز روح مجرد اینڈ روح حیوانی سیم ایز روح الروح. جی, وہ 30ویں پارے کے اندر وہ جو تفصیل پڑی تھی, روح مجرد. ہاں, روح کی روح نہیں, روح حیوانی سیم ایز روح روح نہیں. ایکچولی ایگزیکٹلی وہ الفاظ ظاہر ساجس نہیں آپ لوگوں کو پڑھائے تھے, تو اس وقت تو سمجھا دیے تھے, وہ چیز سامنے بھی تھی. ابھی ایگزیکٹلی وہ الفاظ میرے ذہن میں بالکل ایکوریٹلی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتا ہے میں بھی کچھ گڑبڑ کر جاؤں, لیکن آپ نے جو لکھا ہے تو اس میں کم از کم اتنا نظر آ رہا ہے کہ روح روح جو ہے نا, یعنی روح کی روح, یہ روح حیوانی نہیں ہو سکتی, بلکہ روح کی روح جو ہے وہ تو روح حقیقی ہوئی نا. ٹھیک ہے, اور روح مجرد جو ہے یہ دوبارہ سے دیکھ لیں گے اس کو, تفسیر کو پھر ہو سکتا ہے اگلی کلاس کے اندر پھر اس کو. لیکن بیسیکلی وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی, وہاں پہ جو 30ویں پارے میں جو تفسیر میں حضرت نے لکھا تھا نا, وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ جسم کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ ایک عکس ہوتا ہے اصل روح کا, جو کہ عالم ارواح کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, اب وہ ٹرمینالوجی اور جو الفاظ ہیں وہ ہو سکتا ہے تھوڑا سے آگے پیچھے ہو گئے ہوں آپ کے سوال کے اندر, لیکن کانسیپٹ یہی ہے. اس اقرار کا کسی کو پتہ ہے جسے یاد ہو جب اللہ کو ہم اپنا رب مان رہے تھے؟ صحابہ کرام میں غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے یا کسی اور صحابی سے کہ وہ اس وقت بھی ان کو, یعنی ان کو وہ وقت یاد ہے. ٹھیک ہے, یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے, کسی یعنی صحابی کا ہی تذکرہ مجھے یاد پڑتا ہے یا کسی بہت بڑے والی کا, لیکن یہ جو ایگزیکٹ اس وقت کا جو سین ہے نا, جیسے ایک ڈرامے کا سین ہوتا ہے, تو اس وقت کا جو سین ہے نا, یہ یاد ہونا with all its details, یہ ایک کشفی چیز ہے. کشفی چیز یعنی یہ نا عالم ارواح کا معاملہ ہے, اور ہم رہتے ہیں عالم دنیا کے اندر, فزیکل ورلڈ کے اندر. عالم ارواح کی کسی چیز کو اس کی تمام ڈیٹیلز کے ساتھ بالکل جیسے کہ ایک کیمرا ویژن ہوتا ہے, ایسے دیکھنا جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی ونڈو کھول دیں فرام دس ورلڈ ٹو دیٹ ورلڈ. اس ونڈو کے کھلنے کو کشف کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کشف دیا کہ وہ عالم ارواح کی چیز کو دیکھ رہا ہے, وہ تو دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن دوسرا بندہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو اب دوسرے بندے کو یاد ہے, کیا مطلب یاد ہے, ہم سب کو یاد ہے, لیکن ہماری جو یادداشت ہے نا وہ ایک فطری صلاحیت کے طور پر ہے. کہ ہر شخص کے اندر، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ کی ربوبیت کا اقرار جو ہے وہ فطرتی طور پہ رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر پیچھے بھی اسی کلاس کے اندر بات بھی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کے اندر دبا دیتا ہے، دفن کر دیتا ہے اس ریکگنیشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ربوبیت کے اقرار کو دفن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو دفن نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کو ظاہر کر کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہاں وہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ جو ہے نا وہ یاداشت ایک عام انسان کے پاس نہیں ہوتی. ہاں کشفی طور پر کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہ کشفی معاملہ ہے، تو اس کے اوپر ویسے بھی شریعت ڈپینڈ نہیں کرتی. anyway, تو یہاں تک پھر ہم آج کے لیکچر کو روکتے ہیں، کیونکہ پھر اگلا پیراگراف جو ہے وہ نکالنا شروع کریں گے. اگر کسی اور کو کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں، اب تک کوئی اور سوال نہیں ہے تو ہم کلاس ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.